नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन कोर कमेटी के प्रतिनिधियों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। दिल्ली सरकार ने 6 फ्लाईओवरों के सौंदर्यकरण के लिए 3 निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जल बोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों के वार्षिक रखरखाव के कारण कल सुबह तक कई क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग सेल ने छात्राओं के लिए आत्मरक्षा सत्र का आयोजन किया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन में दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन कोर कमेटी के प्रतिनिधियों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और व्यवस्थित बनाए रखने में सफाई कर्मचारियों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हर बात को गंभीरता से लेते हुए उन्हें आश्वस्त किया गया है कि सरकार उनके समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर सफाई कर्मचारी को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियां मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोक निवास में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजधानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने LPG आपूर्ति श्रृंखला की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने की बात कही ताकि समय पर उपलब्धता बनी रहे। साथ ही कमी को दूर करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए PNG बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि बैठक के दौरान आगामी गर्मी के मद्देनजर ग्रीष्म कार्य योजना की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इसमें लू से निपटने के उपायों को मजबूत करने और राजधानी में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा मानसून की तैयारियों को लेकर भी विचार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए अग्रिम योजना को और प्रभावी बनाने तथा सफाई का काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली सरकार के विभागों, शहरी स्थानीय निकायों, केंद्रीय एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इन चुनौतियों का प्रभावी तरीके से समाधान किया जा सके। समाचार कक्ष से प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
दिल्ली सरकार ने 3 निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इसके तहत दिल्ली के 6 फ्लाईओवरों के नीचे खाली स्थानों और फुटपाथों को साफ, सुंदर और उपयोगी बनाया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार पब्लिक और निजी सेक्टर के साथ मिलकर राजधानी को अधिक सुंदर, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। दिल्ली सरकार ने गोदामों से सीधे LPG सिलेंडर की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तेल विपणन कंपनियों ने सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि इस तरह कोई भी बिक्री गैर कानूनी मानी जाएगी और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक रिपोर्ट।
सरकार ने रसोई गैस को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए पूरे शहर में 5 किलो के सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के बिक्री केंद्रों पर 11 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार रसोई गैस आपूर्ति पर कड़ी नजर रख रही है। उन्होंने लोगों को गैस एजेंसी या भंडार केंद्रों तक जाने से मना किया है क्योंकि बुक किए गए सभी सिलेंडर समय पर सीधे घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली में LPG की आपूर्ति स्थिर रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार 4 अप्रैल से दिल्ली में 1,14,000 से अधिक LPG सिलेंडर की बुकिंग हुई है जबकि 1,31,000 सिलेंडरों की आपूर्ति की जा चुकी है। इसे स्पष्ट है कि लंबित ऑर्डर भी निपटाए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आश्वासन दिया है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि सरकार वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति पर नजर रख रही है।
जरूरी सामानों की कीमतों में कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है। इस साल दालों का उत्पादन पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुआ है। सरकार दालों का भंडार सुरक्षित रखती है और फिलहाल हमारे पास लगभग 28 लाख मीट्रिक टन दाल का स्टॉक मौजूद है।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव सी शिखा ने कहा कि देश में गेहूं और चावल दोनों का पर्याप्त बफर स्टॉक है।
गेहूं का हमारे पास लगभग 220 लाख मीट्रिक टन भंडार है और चावल का करीब 380 लाख मीट्रिक टन। दोनों मिलाकर कुल करीब 602 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न हमारे पास उपलब्ध है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद देश में खाने के तेल की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। प्रमुख देशों से आयात लगातार जारी है, इससे कुल आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करेगी।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 50 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।
हम लगभग 50 लाख सिलेंडर हर रोज दे रहे हैं। पिछले 5 हफ्ते में लगभग 18 करोड़ घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड हाई 97% पर है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इतवार वाले दिन भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स को खोले हैं ताकि सभी को एक स्मूथ एलपीजी डिलीवरी हो पाए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने आज बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों के वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम की वजह से कल सुबह तक कई क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी, जिनमें सुल्तानपुरी, रोहिणी सेक्टर 3, पॉकेट बी क्षेत्र शामिल हैं। जल बोर्ड ने निवासियों को सलाह दी है कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से ही जमा कर लें। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली शिक्षा निदेशालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश हेतु कम्प्यूटरीकृत लॉटरी की प्रक्रिया का अवलोकन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया अभिभावकों और अधिकारियों की उपस्थिति में पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ सम्पन्न हुई, जिससे हर पात्र बच्चे को समान अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। राजधानी में आज भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदेश कार्यालय में भाजपा ध्वज फहराया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता के कारण इस मुकाम तक पहुंची है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश पदाधिकारी योगिता सिंह, प्रवीण शंकर कपूर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। दिल्ली में आज विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की वार्षिक साधारण सभा 2026 का समापन हुआ। इस राष्ट्रीय चिंतन बैठक में देशभर से आए विद्या भारती के 350 पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। 4 दिनों तक चले विचार मंथन में शिक्षा की गुणवत्ता, भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश, नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी युग में नवाचार और विद्यार्थियों में संस्कारों के संवर्धन जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 50 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना के लिए पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की भी घोषणा की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त कानून है। उन्होंने प्रत्येक महिला को कानून के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने की सलाह दी। नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित महिला केंद्रित मुद्दों और सशक्तिकरण पहल पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने लैंगिक संवेदनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
विजया राहटकर ने बताया कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर और सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों का उल्लेख करते हुए आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि इन कानूनों के बारे में जागरूकता की कमी अक्सर महिलाओं को न्याय मांगने से रोकती है। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक धीरज एम काकड़िया ने कहा कि कार्यस्थल सुरक्षित और न्यायपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर शोषण को कतई बर्दाश्त न करने की नीति होनी चाहिए। श्री काकड़िया ने सभी महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत समाधान किया जाएगा। महानिदेशक ने घोषणा की कि आकाशवाणी महिला सशक्तिकरण पर कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एक विशेष श्रृंखला की संयुक्त पहल शुरू करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग सेल ने आज छात्राओं के लिए आत्मरक्षा सत्र का आयोजन किया। यह सत्र मयूर विहार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत त्रिलोकपुरी के ब्लॉक नंबर 27 स्थित सरकारी बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। इस सत्र में लगभग 210 छात्राओं ने भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य युवा छात्राओं में आत्मनिर्भरता और सतर्कता को प्रोत्साहित करना था। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकें, जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले कौशल सीखे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 23 अत्याधुनिक विदेशी हथियार और 211 कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज और मिरांडा कॉलेज को आज सुबह ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत विश्वविद्यालय को खाली करा दिया। इसी बीच दिल्ली पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई। वहीं रामजस कॉलेज के प्रधानाचार्य अजय अरोड़ा ने बताया कि सुबह करीब 11:05 से 11:10 पर ईमेल मिला था। उन्होंने बताया कि तुरंत स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना दी गई है। भारतीय रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क में सुरक्षा संचार अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 1,364 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें लोकोमोटिव पर स्वदेशीय कवच प्रणाली स्थापित करना, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का विस्तार करना और इसके साथ ही पैनल इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बदलना शामिल है। इन कार्यों का उद्देश्य ट्रेनों की आवाजाही को सुनिश्चित बनाना और हाई स्पीड डेटा संचार को बढ़ाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों का पहला वार्षिक सर्वेक्षण शुरू किया है। इस महीने से शुरू हुए सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के निगमित सेवा क्षेत्र का एक व्यापक डेटाबेस विकसित करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में नया आयकर अधिनियम 2025 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संयुक्त सचिव पीताम्बर दास और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली परिचर्चा में शामिल होंगे और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। राजधानी में आज दिनभर मौसम साफ रहा और तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन कोर कमेटी के प्रतिनिधियों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। दिल्ली सरकार ने 6 फ्लाईओवरों के सौंदर्यकरण के लिए 3 निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जल बोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों के वार्षिक रखरखाव के कारण कल सुबह तक कई क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग सेल ने छात्राओं के लिए आत्मरक्षा सत्र का आयोजन किया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।